आगे सबक देखिए भाई। व अरसला हल इराका वलम यदुदहा वलम युशफिक आला नगसिद्दिखाल अल्बैतुली लबीदिन रजी अल्लाह तआला अन्हु यसिफुल हिमार अल वहशी वल उतुना يقول أرسل حمار الوحش الأوتن وكأن المراد بالإرسال البعث والتخلية بين المرسل وما يريد। गुज़श्ता सबक में हम हाल की शराइत पढ़ रहे थे और साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि हाल की एक शर्त यह है कि हाल को नकेरा होना चाहिए और हाल की दूसरी शर्त यह है कि साहिब हाल यानी जुल्हाल जो है उसको मारिफा होना चाहिए। और फिर इसके बाद आगे एक कैद आई थी गालिबन भाई, और उसकी वजह से एतराज हो रहा था। एतराज ये कि यह गालिबन इसका ताल्लुक भी बनता है बजाहिर साहिबुहा मारिफतन से, और यह साहिबुहा मारिफतन ये काना के इसम और खबर हैं यानी उन पर इनका आतफ है और ये शर्तुहा के लिए खबर बन रहे हैं। तो गोया साहिबुहा मारिफतन इसके साथ शर्त का भी ताल्लुक है और इसके साथ गालिबन का भी ताल्लुक है। तो जुल्हाल का मारिफा होना इसके साथ शर्त का भी ताल्लुक और इसके साथ गालिबन का भी ताल्लुक। तो शर्त से पता चला कि जुल्हाल का मारिफा होना लाजिम है, इसके खिलाफ नहीं हो सकता। और आगे गालिबन से पता चला कि जुल्हाल का मारिफा होना गालिब है, मालूम हुआ कभी कभार इसके खिलाफ भी हो जाता है। तो शर्तियत दलालत करती है लुजूम पर और गालिबियत दलालत करती है आदम लुजूम पर। या यूं कहें कि शर्तियत से पता चला कि इसके खिलाफ नहीं हो सकता, यानी जुल्हाल का जो मारिफा होना है इसके खिलाफ नहीं हो सकता, और गालिबियत से पता चला कि इसके खिलाफ हो सकता है। यह तो दोनों बातों में तनाकुज आया भाई, तआरुज आया। तो चुनाचे इसी एतराज की वजह से और शारहीन को इबारत को जाहिर से फेरना पड़ा। जाहिर तो यही था कि साहिबुहा मारिफतन इसका आतफ है अंतकूना नकिरतन पर, लेकिन इस इश्काल की वजह से उनको इबारत को जाहिर से फेरना पड़ा और उन्होंने कहा कि साहिबुहा मारिफतन इसका आतफ अयकूना नकिरतन पर न करें बल्कि इनको आपस में मुबतदा खबर बनाएं और फिर इसका आतफ माकबल वाले पूरे जुमले पर हो जाएगा। तो गोया इस सूरत में फिर शर्त एक ही होगी, हाल की एक ही शर्त है कि वो नकेरा होना चाहिए, जबकि आगे अलग बात बतला रहे हैं कि जुल्हाल का मारिफा होना गालिब औकात के अंदर है, जबकि साहिब जामी फरमाते हैं कि नहीं, जाहिर यही है कि साहिबुहा मारिफतन जो है ये अंतकूना नकिरतन पर आतफ है और वो तो शर्तुहा की खबर है, तो ये भी शर्तुहा की खबर। तो गोया यहां पर दो शर्तें हो गईं, एक शर्त हाल की ये है कि वो नकिरा होना चाहिए, दूसरी शर्त हाल की ये है कि उसका जुल्हाल मारिफा होना चाहिए। और आगे जो गालिबन आ रहा है उसको जुल्हाल के मारिफा होने के साथ ना जोड़ो, वरना फिर एतराज लाजिम आएगा, क्योंकि जुल्हाल का मारिफा होना तो शर्त है, बल्कि इस गालिबन को कैद बनाओ जुल्हाल के मारिफा होने की शर्त के लिए, बल्कि यूं कहो इस गालिबन को कैद बनाओ शर्त के लिए। बात समझ में आ गई, शर्त के लिए कैद बनाओ कि हाल की जो शर्त है कि जुल्हाल मारिफा होना चाहिए, यह शर्त हाल के तमाम मादों में नहीं है बल्कि यह शर्त हाल के अक्सर मादों में है। तो इश्काल खत्म हो गया, शर्त होना भी ठीक हुआ और गालिब होना भी ठीक हो गया भाई। और फिर तफसील बयान की थी साहिब जामी ने, उन्होंने बतलाया कि हाल के वाके होने के जो मादे हैं और हाल के वाके होने की जो तरकीबें हैं वो दो किस्म पर हैं। कुछ वो तरकीबें हैं जिनके अंदर जुल्हाल नकिराए मुखससा होगा और कुछ वो तरकीबें हैं जो इनके अलावा हैं, और ये जो इनके अलावा तरकीबें हैं वो गालिब हैं और उस किस्म के अंदर जुल्हाल का मारिफा होना शर्त है। तो ये दूसरी किस्म में जुल्हाल का मारिफा होना भी शर्त और ये हाल के गालिब मादों में इसी तरह इस्तेमाल होता है, यानी जुल हाल नकरा मुखससा के अलावा होता है। भाई बात समझ में आ गई। और फिर जुल हाल जो है वो नकरा मुखससा कैसे हो सकता है, उसकी कई सूरतें जिक्र की साहिब जामी ने। भाई एक सूरत यह है कि वो जुल हाल जो है उसकी सिफत आ जाए, जैसे जैसे जा अनी रजुलुम मिन बनी तमीम इन फारिसन, तो रजुलुन नकेरा है और इसके बाद जार मजरूर मिन बनी तमीमिन आया, ये इसके लिए सिफत है। और फिर जब ये सिफत आ गई तो इस रजुलुन नकेरा के अंदर तख्सीस आ गई, तो अब इसका जुलहाल होना और इससे आगे हाल का आना सही। दूसरी सूरत यह है नकेरा मुखससा के जुलहाल होने की, कि वो ऐसा नकेरा हो जिसके अंदर इस्तेगराक हो। गई जब इस्तेगराक आया तो तमाम अफराद पर हुक्म लग गया, तो लिहाजा अब इसके अंदर और कोई इहतमाल ही ना रहा, इबहाम खत्म हो गया। तो ऐसा नकेरा जिसके अंदर इस्तेगराक आ जाए तो वो मारिफा की तरह हो जाता है, यानी जैसे मारिफा में कोई इबहाम नहीं होता तो इसके अंदर भी कोई इबहाम नहीं होता। तो ये मारिफा तो ना बना, अलबत्ता मारिफा जैसा हो गया कि इसके अंदर कोई इबहाम नहीं है, क्योंकि इसमें तमाम अफराद पर हुक्म लगा दिया जाता है। और तीसरी सूरत यह जिक्र की थी कि वो नकिरा जो है हय्यिज इस्तेफहाम में वाक हो। गई जैसे हल अता का रजुलन राकिबन, ये रजुलन ये नकिरा है, जुलहाल है और राकिबन आगे से हाल आ रहा है, तो इश्काल होता है कि रजुलन तो नकिरा है, नकिरा महज से तो हाल नहीं आ सकता, तो जवाब यह कि नकिरा तहतल इस्तेफहाम वाक है, और वो नकिरा जो तहतल इस्तेफहाम वाक हो उसके अंदर भी उमूम होता है, इस्तेगराक होता है। लेकिन यह इस्तेगराक उस पहले इस्तेगराक से मुख्तलिफ है, उसमें इस्तेगराक बाई लिहाज था कि तमाम अफराद पर एक हुक्म लगा दिया जाता है, कुल अमरिन हकीम जो है हर हिकमत वाले मामले पर हुक्म लगा दिया, किस चीज का, अमरम मिन इंदिना की, हमारी तरफ से हुक्म होता है। जबकि यहां पर जो इस्तेफाम के तहत नकेरा आता है उसमें जो इस्तेगराक आता है वो अला सबीलिल बदल है। आपने किसी से पूछा हल अता का रजुलन राकिबन, क्या आपके पास कोई आदमी सवार होकर आया है, तो अब इसके अंदर इस्तेगराक बाई लिहाज है कि रजुल इसके अंदर मुतायन नहीं, तो आप गोया दुनिया के हर हर रजुल को लेकर उससे हर एक के बारे में पूछ रहे हैं, क्या ये वाला रजुल आपके पास आया था सवार होकर, क्या ये वाला रजुल आपके पास सवार होकर आया था, क्या ये वाला रजुल आपके पास सवार होकर आया था। तो देखो इसमें भी इस्तेगराक आ गया, लेकिन ये इस्तेगराक किस तरीके पर है, तमाम अफराद पर बयक वक्त हुक्म नहीं है, बल्कि हर हर फर्द जो है उसके बारे में आला सबीलिल बदल पूछा जा रहा है। और कभी कभार इस्तेगराक उस वक्त आएगा जब जुलहाल जो है वो इल्ला से माकबल तहता नफी वाके हो, इल्ला से माकबल तहता नफी वाके हो और फिर इल्ला आकर उसकी नफी को तोड़ दे, जैसे मा जा अनी रजुलुन इल्ला राकिबन, ये रजुलुन ये जुलहाल है और इससे माकबल मा हरफे नफी आ रहा है और इल्ला ने आकर उस नफी को तोड़ दिया। मा जा अनी रजुलुन इल्ला राकिबन, मेरे पास कोई आदमी नहीं आया मगर सवार होकर, मालूम हुआ सवार होकर आए हैं, कुछ लोग सवार होकर आए हैं, तो देखा इस इल्ला ने माकबल की नफी को तोड़ दिया, माकबल में तो था मेरे पास कोई आदमी नहीं आया, लेकिन आगे आगे के सवार होकर कुछ लोग आए हैं। तो यहां पर भी ये जो नकेरा है तहत नफी वाक है, इसलिए ये उमूम और इस्तेगराक का फायदा दे रहा है। और पांचवीं सूरत ये जिक्र की कि वो जुलहाल ऐसा नकेरा हो कि उस पर उसके हाल को मुकदम कर दिया जाए, जैसे मा जा अनी राकिबन रजुलन, तो यहां रजुलन जुलहाल है और राकिबन हाल को उस पर मुकदम कर दिया गया। और आप पढ़ चुके हैं कि तकदीम मा हक्कुहु ताखीरु युफीदुल हसरा वल कसरा व तखसीस, तो इसकी वजह से इस जुलहाल में क्या आ गई, तखसीस आ गई, ये नकरा मुखससा हो गया, तो अब इससे हाल का आना सही हुआ। तो हाल की जितनी तरकीबें हैं उनके अंदर जुलहाल कभी नकरा मुखससा होगा, जैसे कि ये पांच किस्में बयान हो गई, और बाकी तरकीबें वो हैं जिनमें जुलहाल इनके अलावा होगा, और वो तरकीबें गालिब हैं, अक्सर वो तरकीबें इस्तेमाल होती हैं और उनके अंदर जुलहाल का मारिफा होना शर्त है। भाई जी अब आइए आज के सबक पर कहते हैं व अरसला العراق ولم يزدها ولم يشفق على نغص الدخال البيت للبيد رضي الله تعالى عنه يصف الحمار الوحش والأطنا। भाई देखिए, इन्होंने आपको बतला दिया कि हाल के अंदर शर्त यह है कि हाल हमेशा नकेरा होगा। अब इस पर इश्काल होता है कि वह अरसला हल इराका, ये शेर का मिसरा है भाई, आधा मिसरा है। वह अरसला हल इराका, इस मिसाल के अंदर अल इराका ये जो है हाल वाके हो रहा है और ये तो मारिफा है, इस पर अलिफ लाम दाखिल है। हालांकि आपने हमें क्या बताया कि हाल का नकेरा होना शर्त है, लाजिम है। इसी तरह अगले मतन में देखिए, वह मररतु बिही वहदहु, इस मिसाल के अंदर देखो ये वहदहु हाल है बिही की हा जमीर से, बिही की हा जमीर से, और ये देखो ये मारिफा है, वहदा मुजाफ हा जमीर मुजाफुन इले, और ये कोई लफ्ज जब मारिफा की तरफ मुजाफ हो जाए तो वो भी क्या बन जाता है, मारिफा। तो ये वहदहु हाल है और ये मारिफा है। हालांकि आपने हमें कहा कि हाल के अंदर शर्त यह है कि वो नकेरा होना चाहिए, तो अब वो इश्काल जो है उसका जवाब देंगे साहिबे काफिया भाई। तो कहते हैं वह अरसला हल इराका, मतन मतन देखिए, तो कहते हैं वह अरसला हल इराका व मररतु बिही वहदहु व नहवुहु, और इस जैसी जो मिसालें हैं यानी जिनके अंदर हाल मारिफा नजर आ रहा है बजाहिर, कहते हैं इस जैसी जो मिसालें हैं मुतअव्वलुन, उनमें तावील की गई है, उनमें तावील की गई है जी। तफसील आगे शरा के साथ बयान हो जाएगी। अब देखिए शरा के साथ भाई, कहते हैं व अरसला इराका वलम यजुदहा वलम युशफिक अला नगसिद दिखाल। ये शेर है हजरत लबीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का भाई, हजरत लबीद इब्ने रबीआ रजी अल्लाह तआला अन्हु अरब के चोटी के शुअरा में से थे भाई, हत्ता कि इनका कसीदा जो है वो भी शामिल है सबाए मुअल्लकात के अंदर। अरब के वो मशहूर कसीदे जिनको सूक़े उकाज में या बैतुल्ला के साथ लटकाया जाता था, अरब जो है लोगों को अपनी फसाहत और बलागत दिखाने के लिए इनको वहां लटकाते थे कि दुनिया वालों को पता चले कि हमारी जुबान और हमारे शुआरा कितने फसीह और बलीग हैं। तो इनका भी ये कसीदा उसके अंदर शामिल है भाई, और ये फिर बाद में इस्लाम ले आए, हुजूर अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम ले आए थे। तो ये उनका एक शेर है, इस शेर के अंदर देखो अल इराक जो है ये हाल वाके हो रहा है और ये मारिफा है भाई, और ये शेर किसका है, अरब के चोटी के शुआरा में से जो शायर हैं उनका शेर है, लिहाजा आप इसको गलत भी नहीं कह सकते। तो उसका जवाब साहिब काफिया देंगे कि इनमें तावील की गई है, इनमें तावील की गई है कि ये सूरतन तो मारिफा हैं लेकिन हकीकत में यूं कहें माना के एतबार से ये नकेरा हैं भाई। देखिए भाई तर्जमा देखिए, वह अरसला हल इराका, अरसला युरसिल इरसाल का एक माना होता है भेजना, और इसी तरह याद रखो अरसला युरसिल इरसाल का एक माना है आजाद छोड़ देना, और यहां यही माना मुराद है। इरसाल का एक माना क्या है, भेजना, और एक माना है आजाद छोड़ देना, यहां अरसला का माना है आजाद छोड़ देना। उर्दू की शुरुआत वगैरह आप उठाएंगे तो उन सब ने इसका माना भेजने के किए हैं, लेकिन याद रखना यहां इसका माना भेजना नहीं, मैं आगे वजह भी जिक्र करूंगा कि यहां क्या माना है, आजाद छोड़ना है, भेजना माना नहीं है भाई। तो आजाद छोड़ने को भी इरसाल कहते हैं, चुनांचे आप पढ़ेंगे भाई आगे। देखो हम तो नमाज के अंदर हाथ बांधते हैं, नमाज शुरू करते हैं और हाथ बांध देते हैं सीने पर, जबकि इमाम मालिक रहमहुल्ला के नजदीक सुन्नत यह है कि हाथों को खुला छोड़ दिया जाए। जैसे रुकू के बाद आप हाथों को खुला छोड़ देते हैं, बांधते नहीं हैं, इमाम मालिक जो है उनका मजहब यही है कि नमाज के अंदर मसनून यह है कि हाथों को खुला छोड़ दिया जाए। चुनांचे जब आप हरामैन के सफर पर जाएंगे, अल्लाह ताला हम सबको बार बार वहां की ज्यारतें और वहां के सफर नसीब फरमाए भाई, तो वहां जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह के मजहब पर जितने लोग हैं वो नमाज के अंदर हाथ खोल कर खड़े हैं भाई। तो इसको कहते हैं इरसाल, ये जो हाथ खुले छोड़ दिए जाएं इसको क्या कहते हैं? इरसाल कहते हैं। तो यहां ये माना है इरसाल का, खुला छोड़ देना। तो ये हुआ ये कि हजरत लबीद रजी अल्लाह तआला अन्हो किसी जमाने में जंगल में से गुजर रहे थे भाई, सहरा के अंदर गुजर रहे थे, और वहां उन्होंने देखा कि एक जंगली गधा ऊंची जगह पर खड़ा है और नीचे जो जंगली गधियां हैं यानी जो मुअन्नस हैं वो पानी के पास जमा है, सारी उन्होंने हुजूम लगाया हुआ है और पानी पी रही हैं, जबकि जो मुजक्कर जंगली गधा है एक वो ऊंची जगह पर वहां खड़ा है, वो पानी के लिए नहीं गया भाई। गोया यूं मालूम होता था कि ये मुजक्कर जो है इसको शिकारियों के हमले का खौफ है, तो ये ऊंची जगह पर खड़ा होकर गोया उन सब की हिफाजत का काम सर अंजाम दे रहा है और वो सब पानी पीने में मसरूफ हैं और ये ऊंची जगह पर खड़ा होकर शिकारियों पर नजर रखे हुए है कि कोई शिकारी ना आ जाए भाई। तो हजरत लबीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को यह मंजर बड़ा अजीब मालूम हुआ कि देखो मुजक्कर जो है वो इन मुअन्नस की हिफाजत कर रहा है। तो उन्होंने फिर ये शेर कहा, तो क्या कहते हैं? वह अरसलहल इराका, अरसला युरसिलु इरसाल का फाइल जो है वो हिमारे वहशी है, वो हिमारे वहशी, वो जंगली गधा। और ये हाजमीर जो है ये उतुन को राजे है, उतुन जमा है अतान की, और अतान कहते हैं वो जो जंगली गधी है जो मुअन्नस है भाई, हिमारे वहशी की जो मुअन्नस है उसको क्या कहते हैं? अतान। मुजक्कर को क्या कहते हैं? हिमार। और मुअन्नस को क्या कहते हैं? अतान कहते हैं, और इसकी जमा उतुन आती है और ये हाजमीर उतुन को राजे है। वह अरसलहा, और उस हिमारे वहशी ने उन उतुन को आजाद छोड़ दिया, अल इराका, इस हाल में कि वह हुजूम करने वाली थी, वो सारी पानी पर इकट्ठी हो गई तो हुजूम लग गया भाई, एक दूसरे से टकरा रही हैं, एक दूसरे को धक्के दे रही हैं, सारी पानी पर जमा है, पानी पीने की कोशिश कर रही हैं। तो कहते हैं वह अरसलहल इराका कि जंगली गधे ने उन सब जो हैं वो जो मुअन्नस हैं उनको आजाद छोड़ दिया, इस हाल में कि वो हुजूम करने वाली थी। वलम यजुदहा, ज्यादा यजुदू का माना है मना करना, वलम यजुदहा, और इसने इस जंगली गधे ने लम यजुदहा उनको मना नहीं किया, उनको रोका नहीं, यानी इस हुजूम लगाने से उसने उनको नहीं रोका, नहीं मना किया। वलम युश्विक, अशफक, युश्विक इशफाक का माना है यहां डरना और खौफ करना। वलम युश्विक, और उसने खौफ नहीं किया, जंगली गधे ने खौफ नहीं किया, अला नगसिद दिखाली, नगस कहते हैं कि कोई पीने वाला पूरी तरह पेट भर कर न पी सके, इसको कहते हैं नगस, यानी शुर्ब का अधूरा रह जाना, शुर्ब का अधूरा रह जाना, ना मुकम्मल रह जाना, इसको कहते हैं नगस। और दिखाल, याद रखो आगे चलकर आगे साहिब जामी भी मुकम्मल शरा करेंगे, ये जो बातें मैं बयान कर रहा हूं ये सारी शरा के अंदर भी वो जिक्र करेंगे। दिखाल याद रखो, दिखाल ऊंटों को पानी पिलाने का एक खास तरीका है, याद रखो अरब जो है ना अरब, ये ऊंटों को 10-10 12-12 दिन के बाद पानी पिलाते थे, ये ऊंचों के सहराओं में ये रहते हैं और सहराओं के अंदर पानी बड़ा कम मिलता है, तो अल्लाह ताला ने इनको ऊंट जैसी सवारी नसीब फरमा दी। अब सहरा के अंदर कोई और जानवर हो वो तो प्यासा एक दो दिन से ज्यादा नहीं गुजार सकेगा, मर जाएगा भाई, लेकिन ये ऊंट को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि ये पानी को जिस्म के अंदर जो है जखीरा कर लेता है और फिर वो 10-12 दिन तक उसी पानी को जरूरत के मुताबिक इसका बदन उसको इस्तेमाल करता रहता है। और नीज फिर ये जो ऊंट है इसके पांव अल्लाह ने खूब चौड़े चौड़े बना दिए, आम जानवर जब रेत के अंदर चलता है, आप भी रेत के अंदर चलेंगे तो बड़ा दुश्वार होता है चलना, क्योंकि पांव रेत के अंदर धंसते हैं तो कई गुना ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है हर कदम पर भाई। तो जबकि ये ऊंट के पांव बड़े चौड़े होते हैं, यह रेत पर चलता है तो इसके पांव रेत के अंदर धंसते नहीं है, और इसी तरह सहरा के अंदर तो हवा चलती है तो बहुत ज्यादा रेत उड़ती है, तो अल्लाह ताला ने ऊंट की आंखों पर बारीक पर्दे बना दिए, बारीक पर्दे, बारीक सी झिल्ली होती है उसकी आंखों के ऊपर भाई। चुनांचे अगर आंधी भी चल रही हो, जितनी भी मिट्टी उड़ रही हो, इसको आंखें बंद करने की हाजत पेश नहीं आती। वो झिल्ली जो है वो सारी रेत और मिट्टी को अपने ऊपर रोक लेती है। तो ये जो ऊंट है, इसको अरब 10-12 दिन के बाद पानी पिलाने के लिए लाते थे। तो अब एक दफा पानी पर जब ले आए, तो बाद औकात ये खौफ होता कि पता नहीं इसने पेट भरकर पानी पिया है या नहीं पिया। तो चुनांचे फिर जब ऊंट पानी पी लेते, तो फिर इस ऊंट को दोबारा दो ऊंटों के दरमियान फिर पानी पर ले आते। दो ऐसे ऊंट जिन्होंने अभी तक पानी नहीं पिया, ये एक तो पानी पी चुका है लेकिन इसके बारे में खौफ है कि शायद इसने अभी पानी पूरा नहीं पिया होगा, तो दो प्यासे ऊंटों के दरमियान इसको ले आते थे। अब वो दो प्यासे ऊंट जब पानी पर पहुंचेंगे, वो तो खूब पानी पिएंगे, तो ये जब दरमियान में उन दोनों को देखेगा तो ये भी कुछ ना कुछ पानी पी लेगा। तो अगर हो सकता है इसने पूरी तरह पिया ना हो, तो अब ये भी सेर हो जाएगा पानी से अच्छी तरह भाई। तो ये जो ऊंटों को पानी पिलाने का तरीका था, दो प्यासे ऊंटों के दरमियान लाकर दोबारा पानी पिलाना, इसको कहते थे दिखाल भाई। क्या कहते थे? दिखाल दाखिल से है, देखो उसको दो ऊंटों के दरमियान दाखिल कर दिया ताकि वो अच्छी तरह पानी पी ले। और इसको शिरबुन दिखालुन या शुरबुन दिखालुन कहते थे, यानी दिखाल वाला पीना भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलम युशफिक, और उस जंगली गधे ने खौफ नहीं किया, वो डरा नहीं, अला नगसी दिखाली, अला नगस, नगस का क्या माना? शुरब का अधूरा रह जाना, पेट भर के पानी न पीना। तो उसने खौफ नहीं किया, अला नगसित दिखाली, मैंने दिखाल का माना बयान कर दिया, लेकिन यहां दिखाल का माना कर लें आप मुदाखलत भाई, मुदाखलत। वजह यह कि दिखाल तो उस हैवान के लिए होगा जो आपके काबू में है। तवज्जो है, ऊंट आपके काबू में है, वहां आप दिखाल कर सकते हैं, लेकिन जंगली गधे और जंगली गधियां जो हैं उनके अंदर तो दिखाल नहीं हो सकता, वो तो आपके काबू में ही नहीं है। तो यहां दिखाल किस माना में है? मुदाखलत के माना में है, यानी वो जंगली गधियां थीं, वो आपस में एक दूसरे के अंदर घुसी हुई थीं, एक दूसरे के साथ टकरा रही थीं, और इस टकराने की वजह से खौफ था, इस टकराने की वजह से खौफ पैदा होता है कि शायद ये पानी पूरी तरह न पी सकें। भाई जाहिर सी बात है, एक हैवान है इत्मीनान से आकर पानी पीता है और एक हुजूम लगा हुआ है, एक दूसरे के साथ धक्के लग रहे हैं, तो यकीनन इस हालत में बहुत से ऐसे हैवान भी रह जाएंगे जो पूरी तरह सेर न हुए हों भाई। तो लिहाजा वो कहते हैं वलम युशफिक आला नगसित दिखाली, और वो हिमारे वाशी ने खौफ नहीं किया, आला नगसित दिखाली, किस चीज का खौफ नहीं किया? दिखाल के नगस पर, दिखाल के, यहां दिखाल का क्या माना कर लें? आपस में एक दूसरे के अंदर म्यान मुदाखलत, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होना, एक दूसरे को धक्के देना। तो उसने खौफ नहीं किया, अला नगसित दिखाली, दिखाल के नगस पर, यानी कि इस दिखाल की वजह से कहीं इनका पीना अधूरा न रह जाए, यह खौफ उसने नहीं किया। माना समझ में आ गया? फिर देखिए तर्जमा, व अरसलहल इराका, और हिमारे वहशी ने आजाद छोड़ दिया उन जंगली गधियों को, अल इराक, इस हाल में कि वो हुजूम करने वाली थी, वलम यजुदहा, और इस हिमारे वहशी ने मना नहीं किया उनको इस तरह हुजूम लगाने से, वलम युशफिक, और इसने खौफ नहीं किया, अला नगसित दिखाली, दिखाल के नगस का, दिखाल के नगस पर इसने खौफ नहीं किया कि कहीं इस मुदाखलत की वजह से ये पूरी तरह सेर होकर न पी सकें, इसका उसने खौफ नहीं किया। तो नगस हुआ मुजाफ, अदिखाली है मुजाफोन इले, देखो खौफ नहीं किया किस चीज का? कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पेट भरकर पानी न पी सकें, और किस वजह से? दिखाल की वजह से, गोया दिखाल यानी आपस की मुदाखलत, आपस की जो मुदाखलत है उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये पेट भरकर पानी न पी सकें। तो ये नगस मुसब्बब की इजाफत है सबब की तरफ, तवज्जो है, ये मुसब्बब की इजाफत है सबब की तरफ, पूरी तरह सेर होकर न पी सकेंगी, इसका सबब क्या होगा? दिखाल यानी आपस की मुदाखलत, आपस में एक दूसरे के साथ टकराना, तो ये मुदाखलत की सबब बनेगा, किस चीज का? पूरी तरह न पीने का। तो मुदाखलत है सबब और नगस है उसका मुसब्बब, तो ये इजाफत हो रही है मुसब्बब की सबब की तरफ। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वल्लम युशफिक आला नगस दिखाली, और उसने खौफ नहीं किया दिखाल के नगस का, यानी दिखाल के सबब से नगस का उसने खौफ नहीं किया। मालूम हुआ ये इजाफत है मुसब्बब की सबब की तरफ। देखिए भाई अब यही इशारा करेंगे साहिब जामी, कहते हैं अल बैतु लिलबीदिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यसिफु हिमार अल वहशी वल उतुना, कि ये शेर हजरत लबीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है जो तारीफ फरमा रहे हैं हिमार वहशी की और उतुन की। यकूलू, तो वो कहते हैं अरसला हिमार उल वहशिल उतुना, कि आजाद छोड़ दिया हिमार वहशी ने उतुन को। वकअन्नल मुराद बिल इरसालिल बासु वत्तखलियतु बैनल मुरसली व मा युरीद, और गोया के इरसाल से मुराद जो है अल बासु, बास का माना भी आजाद छोड़ना। याद रखो मैंने बताया आपको इरसाल का माना भेजना भी और आजाद छोड़ना भी, और इसी तरह बास के भी यही दोनों माना आते हैं। बास का माना भी भेजना भी और आजाद छोड़ना भी। आम शारिहीन इसका क्या तर्जमा करते हैं कि इरसाल का माना है भेजना, उसने भेजा उनको पानी पिलाने के लिए, हालांकि भेजना, भेजने का काम तो ये जंगली गधा नहीं कर सकता, भेजना तो ज़बील उकूल का काम है। बात समझ में आ रही कि किसी को किसी चीज के लिए भेजा जाए ये ज़बील उकूल का काम है। तो मैंने इसीलिए कहा कि यहां इरसाल का क्या माना करो, आजाद छोड़ना, और अलबास का भी यही माना आता है आजाद छोड़ना। और दलील क्या है, दलील ये आगे जो माना कर रहे हैं व तखलियतु बैनल मुरसली व मा युरीद, के आजाद छोड़ देना मुरसल और जिसका वो इरादा करता है, मुरसल जिसको आजाद छोड़ा गया है, तखलिया कर देना किसके दरमियान, मुरसल व मा युरीद के दरमियान जिसका वो इरादा कर रहा है। देखो भेजने का काम ये तो जंगली गदा नहीं कर सकता, हां आजाद छोड़ने का काम कर सकता है। किस तरह आजाद छोड़ने का काम किस तरह कर सकता है, ये भी तो वो नहीं कर सकता। आजाद छोड़ने का तो माना ये है कि पहले एक चीज बंधी हुई हो फिर आप उसको क्या कर दें, छोड़ दें। कहते हैं यहां गोया शायर का इरादा ये है, आजाद छोड़ने से मुराद ये है कि उसने वो जो मुरसल हैं जिनको आजाद छोड़ा है और जिसका उन्होंने इरादा किया है उनके दरमियान कोई रुकावट नहीं डाली, उनके दरमियान कोई रुकावट नहीं डाली। तो कोई रुकावट न डालना ये ऐसे ही है जैसे आजाद छोड़ दिया। तो ये तखलिया से पता चला कि इरसाल का यहां कौन सा माना है, आजाद छोड़ना है, यहां भेजने का माना नहीं बनता। तो कहते हैं वकानल मुराद बिल इरसाल अलबासु व तखलियतु, देखो अब ये माना बयान कर रहे हैं इरसाल का, और अलबासु व तखलियतु बास लेकर आए, लेकिन बास के भी वही दोनों माना आते थे जो इरसाल के दोनों माना आते हैं। तो आगे फिर आत्फे तफसीरी करके और उसकी वजाहत कर दी कि इरसाल का माना भेजना नहीं है बल्कि उनके दरमियान रुकावट ना बनना है। तो कहते हैं वकअन्नल मुराद बिल इरसाल अलबासु व तखलियतु बैनल मुरसली व मा युरीदु, और गोया के इरसाल से मुराद जो है आजाद छोड़ना है, व तखलियतु बैनल मुरसली व मा युरीदु, और खलवत कर देना यानी आजाद छोड़ देना मुरसल व मा युरीद को, यानी मुरसल जिनको आजाद छोड़ा गया है और वो जिसका वो इरादा करते हैं यानी पानी का, उसके दरमियान तखलिया कर देना यानी उसमें कोई रुकावट न डालना। ऐ अरसलहा मुअतरिकतन मुतज़ाहिमतन, देखो अब माना बयान कर रहे हैं शेर का, शेर में क्या आया था वह अरसलहा अलइराक, अब माना कर रहे हैं ऐ अरसलहा मुअतरिकतन मुतज़ाहिमतन, मुअतरिका इअतरक यातरिको इअतराक जो है इसका माना है हुजूम करना भीड़ लगाना, और मुतज़ाहिमतन तज़ाहुम कहते हैं आपस में एक दूसरे से टकराना एक दूसरे को धकेलना, इसको क्या कहते हैं तज़ाहुम। भाई देखो अब अल इराक का तर्जमा किसके साथ कर रहे हैं, मुअतरिकतन के साथ, अल इराक था मारिफा और मुअतरिकतन इसका तर्जमा किसके साथ कर रहे हैं, नकिरा के साथ, यानी ये हाल जो है ये सूरत के एतबार से मारिफा है लेकिन माना के एतबार से ये नकिरा है क्योंकि हाल में शर्त है कि वो नकिरा होना चाहिए। तो अल इराक किस माना में हुआ, मुअतरिकतन के माना में हुआ, और मुअतरिकतन देखो ये तो नकिरा है भाई, तो कहते हैं ऐ अरसलहा मुअतरिकतन मुतज़ाहिमतन, यानी उस हिमारे वहशी ने उन उतुन को आजाद छोड़ दिया, मुअतरिकतन इस हाल में कि वो हुजूम कर रही थी, मुतज़ाहिमतन आपस में एक दूसरे से टकरा रही थी, वलम यजुदहा ऐ वलम यमनअहा और उसने उनको मना नहीं किया, अनिल इराक की हुजूम लगाने से, वलम युशफिक ऐ वलम यखफ और उसने खौफ नहीं किया, अला नगसित दिखाली इस बात पर के कहीं नगस न हो दिखाल की वजह से, यानी पीना जो है मुकम्मल न हो, पीना उनका अधूरा रह जाए, किसकी वजह से, दिखाल की वजह से, इसका उसने खौफ नहीं किया। ऐ अला अन्नहु लम यतिम मशूर बुबाजिहा लिल माई बिद्दिखाली, यानी खौफ नहीं किया इस बात पर कि पूरा नहीं होगा शुरबु बाजिहा इनमें से बाज का पीना, यानी बाज पूरी तरह सेर होकर नहीं पी सकेंगी, लिल माई पानी को, बिद्दिखाली आपस में बाहमी मुदाखलत की वजह से। तो कहते हैं फिर देखिए, वलम युशफिक ऐ वलम यखफ अला नगसिद दिखाली और उसने खौफ नहीं किया नगसुद्दिखाल पर, ऐ अला अन्नहु लम यतिम शुरबु बाज़िहा लिल माई, यानी इस बात पर कि इनमें से बाज का पानी को पीना वो मुकम्मल न हो सकेगा, बिद्दिखाल किसकी वजह से, दिखाल की वजह से। देखो ये बात सबबिया ले आए, बतलाना ये चाहते हैं कि नगस की इजाफत जो दिखाल की तरफ हो रही है वो मुसब्बब की इजाफत है सबब की तरफ, ये दिखाल सबब बन सकता है उस नगस का, इसका उसने खौफ नहीं किया। अब दिखाल किसे कहते हैं, कहते हैं वह दिखाल हुआ अं यशरब अल बईर, और दिखाल यह है कि ऊंट जो है वो पानी पी ले, बईर किसे कहते हैं ऊंट को, और दिखाल यह है कि ऊंट पानी पी ले, सुम्मा युरद्दु मिनल अतनी इलल हौजी फिर इसको वापस लौटाया जाए अतन से हौज की तरफ, फिर इसको वापस लौटाया जाए अतन से पानी पीने के हौज की तरफ। अतन कहते हैं ये पानी का तालाब या कुआं वगैरह हो उसके इर्द गिर्द जो जानवरों के बैठने की जगह होती है उसको आतन कहते हैं। देखो हैवानात जिन लोगों के रेवड़ होते हैं वो पानी पिलाने के लिए जानवरों को लाते हैं तालाब या कुएं वगैरह पर, अब वहां पर बाज़ों का सारे इकट्ठे नहीं पी सकते, जगह थोड़ी है, तो कुछ वहीं पर खड़े हैं, कुछ वहीं पर बैठ जाते हैं और कुछ पानी पीने में मसरूफ हैं, तो ये जो इनके बैठने की जगह है ये क्या है, आतन। या फिर कुछ पीते जा रहे हैं जो शेर हो जाते हैं, अब वो इधर उधर तो चरवाहा उनको जाने नहीं देता, तो वो वहीं करीब ही कुएं के पास या तालाब के पास जमीन पर बैठ जाते हैं, तो वो जो जगह है जो है तालाब या कुएं के पास जानवरों के बैठने की उसको आतन कहते हैं। तो देखो अरबी कितनी फसीह और बलीग जुबान है कि इंसान हैरान रह जाता है। आतन देखो कितनी तवील मुझे शरा करना पड़ी कि आतन किसे कहते हैं, तालाब या कुएं के पास जानवरों के बैठने की जो जगह होती है, और अरबी में एक ही लफ्ज़ है अल आतन, ये सारा माना वो अदा कर रहा है। तो देखो दिखाल क्या बतला रहे हैं कि ऊंट ने पानी पी लिया, फिर आतन जहां वो पास ही बैठने की जगह थी वहीं बैठा है, फिर उसको दो प्यासे ऊंटों के दरमियान लाया जाता है ताकि दाएं बाएं वालों को वो देखे कि वो तो खूब पानी पी रहे हैं, तो ये भी उनको देखकर कुछ पी ले ताकि अगर इसकी प्यास अधूरी रह गई है तो वो पूरी तरह सेर हो जाए पानी से। तो कहते हैं वह दिखाल हुआ अं यशरब अल बईर, और दिखाल वो ये है कि ऊंट पानी पी ले, सुम्मा युरद्दु मिनल अतनी इलल हौज़ी फिर इसको वापस लौटाया जाए अतन से हौज की तरफ, वयुदखल बैन बईरैन अदशानैन और इसको फिर दाखिल किया जाता है दो प्यासे ऊंटों के दरमियान, लिया शरबा मिन्हु ताकि ये हौज से पी ले, मा असाहु लम यकुन शरिबा मिन्हु, ये मा से मुराद है पानी, मां से क्या मुराद है पानी, और असाहु लम यकुन शरीबा मिन हु ये इस मां का सिला है, मां का सिला। अब तर्जमा सुनो, लिया शराबा मिन हु ताकि वो उस हौज से पी ले, मां वो वाला पानी, असाहु लम यकुन शरीबा मिन हु कि हो सकता है उसने वो पानी न पिया हो, ताकि उस हौज से वो वाला पानी पी ले जो हो सकता है इसने न पिया हो, यानी अपनी प्यास पूरी तरह न बुझाई हो। भाई वला अल्लल मुराद बिही हाहुना नफ्सु मुदाखलति बाजिहा फी बाजिन, और शायद मुराद जो है यहां पर वो नफ्से मुदाखलत है बाज की बाज में, यानी उन हैवानात की बाहम एक दूसरे में घुस जाना वो मुराद है यहां पर दिखाल से। क्यों ये माना क्यों किया? इसलिए क्योंकि मैंने बताया दिखाल तो उस हैवान में होगा जो आपके काबू में है, और ये तो जंगली गधे और गधियां हैं, ये तो आपके काबू में नहीं है, यहां तो दिखाल का तसव्वुर नहीं हो सकता। लेकिन लफ्ज़ तो दिखाल ही जिक्र है और दिखाल तो उसी पानी पिलाने के तरीके को कहते हैं, तो कहते हैं शायद इससे मुराद वो जानवरों का आपस में एक दूसरे के दरमियान घुसा हुआ होना है, जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, उस टकराने की वजह से नगस का खौफ उस हिमारे वाशी ने नहीं किया, यह मुराद है। ये माना है कि वला अल्लल मुराद बिही हा हुना, और शायद कि दिखाल से यहां मुराद जो है नफ्सु मुदाखलती बाजी हाफी बाजिन, वो बाज की बाज के अंदर नफ्से मुदाखलत है, बाज का बाज में घुस जाना वो मुराद है। अविल माना, अब दूसरा माना करेंगे, अविल माना या माना ये है अला नगसिन मिसल नगसिद दिखाल, कि यहां जो नगसिद दिखाल आया है ये तशबीह के लिए है। दिखाल तो उन हैवानात में होता है जो आपके काबू में है, और इनके दरमियान तो दिखाल नहीं, लेकिन जो जानवर आपके काबू में है वहां दिखाल किया जाता है किसकी वजह से? नगस की वजह से, नगस की वजह से दिखाल किया जाता है। तो कहते हैं हो सकता है यह माना हो कि उस हिमारे वहशी ने नगस का खौफ नहीं किया जैसा कि नगस से दिखाल होता है, वो जो उतुन थी उन्होंने हुजूम लगाया हुआ था, तो इस हिमारे वहशी ने उन पर नगस का खौफ नहीं किया जिस तरह का नगसुद्दिखाल होता है। जिस तरह अब देखो, अब फिर नगसुद्दिखाल मुजाफ मुजाफिले आ गए, लेकिन अब मामला बराक्स है। पहले क्या था, नगसुद्दिखाल में किसकी इजाफत किसकी तरफ हो रही थी? मुसब्बब की इजाफत थी सबब की तरफ। और ये जो ऊंटों को दोबारा दिखाल करवाते हैं ये क्यों करवाते हैं? नगस की वजह से। यहां नगस सबब बनता है किस चीज का? दिखाल का सबब बनता है। तो पहली माना के मुताबिक अला नगसी दिखाली, वो मुसब्बब की इजाफत हो रही थी सबब की तरफ। लेकिन अगर दूसरा माना करें तो फिर इस सूरत में सबब की इजाफत हो रही है मुसब्बब की, क्योंकि ऊंटों में जो दिखाल करवाया जाता है उसका सबब वो नगस का खौफ होता है कि हो सकता है कहीं इसने शुर्ब पूरी तरह न किया हो, तो उस खौफ की वजह से फिर दिखाल करवाया जाता है। तो नगस सबब हुआ दिखाल का, तो सबब की इजाफत हो रही है मुसब्बब की तरफ। और फिर इस नगस को, ये जो उतुन के अंदर नगस हो सकता है, इस नगस को तशबीह दी उस नगस के साथ जो सबब बनता है दिखाल का। बात समझ में आ गई? अविल माना या माना जो है आला नगसिन के, उसने खौफ नहीं किया नगस का, मिसल नगसिद दिखाल, जैसे कि नगसुद दिखाल होता है। माना समझ में आ गया? आगे देखिए, व मररतु बिही वहदहू, मैं गुजरा उसके पास से वहदहू, इस हाल में कि वो अकेला था। ये वहदहू हाल है बिही की हाजमीर से, और याद रखो ये वहदहू वहद मसदर है और इसकी इजाफत हाजमीर की तरफ हो रही है। वहीदा यौहदु वहदन, इसका माना है अकेला होना, और ये मुफरत तस्निया जमा सब के लिए इसी तरह रहता है। वहदहू वहदहुमा वहदहुम, तो वह मररतु बिही वहदहू, और मैं गुजरा उसके पास इस हाल में कि वह अकेला था। वह नहवहू, और इस जैसी जो मिसालें हैं, अरसलह अलइराक और मररतु बिही वहदहू, इस जैसी जो मिसालें हैं यानी जिनके अंदर हाल मारिफा वाक़े हो रहा है, मुतअव्वलन उनमें तावील की गई है। तो कहते हैं वह मरर तु बिही वहदहू व नहवहू, और इस जैसी जो मिसालें हैं, मिसलु फालतहू जोहदा का, फालतहू जोहदा का, इसके अंदर भी देखो जोहदा का मुजाफ मुजाफिले मिलकर यह हाल बन रहा है, और यह तो मारिफा है क्योंकि जोहद नकेरा है और काफ जमीर मारिफा है, और नकेरा की इजाफत मारिफा की तरफ हो जाए तो वह भी क्या बन जाता है? मारिफा। अच्छा भाई, यहां एक और बात जहन में आ गई, वो भी सुन लें। याद रखें, नकेरा की इजाफत मारिफा की तरफ हो तो वह नकेरा मारिफा बन जाता है, लेकिन कुछ लफ्ज ऐसे हैं कि उनकी इजाफत मारिफा की तरफ कर भी दी जाए फिर भी वो नकेरा के नकेरा ही रहते हैं। कुछ लफ्ज ऐसे हैं कि मारिफा की तरफ उनकी इजाफत भी कर दी जाए वो फिर भी नकेरा के नकेरा ही रहते हैं। जैसे मिसलुन है, शिबहुन है, गैरुन है, अहदुन है, तो इस तरह के कुछ जो लफ्ज हैं इनकी अगर मारिफा की तरफ इजाफत कर दें फिर भी ये मारिफा नहीं बनते भाई, क्योंकि मारिफा किसे कहते हैं जो किसी मुअय्यन जात पर दलालत करे। मैंने कहा गैरु ज़ैदिन, जैद के अलावा, गैर की इजाफत मैंने जैद की तरफ कर दी, गैरु ज़ैदिन, जैद के अलावा कोई मुतअय्यन शख्स आपके जहन में आया, जैद के अलावा तो अमर भी हो सकता है, बकर भी हो सकता है, खालिद भी हो सकता है, दुनिया का हर फर्द हो सकता है, तो देखो कोई मुअय्यन आपके जहन में नहीं आया, मालूम हुआ गैर की इजाफत जैद मारिफा की तरफ कर दी, फिर भी यह नकिरा का नकिरा है। या मैं कहता हूं मिसलु ज़ैदिन, जैद जैसा, कोई मुतायन आपके जहन में आया नहीं, देखा मिसलु भी उसी तरह नकेरा का नकेरा ही है। या मैं कहता हूं शिबहु ज़ैदिन, जैद के मुशाबे, देखो ये भी नकेरा ही है। या इसी तरह मैं कहता हूं जाअनी अहदुहुम, उनमें से एक मेरे पास आया था, तो अहदु मुजाफ हुम ज़मीर मुजाफोन इलै, उनमें से एक, कोई मुतायन जहन में आया नहीं, तो ये अहद का लफ्ज भी मारिफा की तरफ मुजाफ हो जाए फिर भी ये नकेरा ही रहता है। बात समझ में आ गई। तो बहरहाल यहां तो ये जोहद का जोहद मुजाफ है और काफ जमीर मुजाफुन इले और ये मारिफा बन गया। जोहद का माना है कोशिश करना भाई, और इसकी इजाफत हो रही है काफ जमीर की तरफ, जोहदा का आपका कोशिश करना, फालता हूं आपने वो काम किया, जोहदा का इस हाल में कि आप अपनी कोशिश करने वाले थे, यानी आपने वो काम अपनी पूरी कोशिश से किया। आप किसी को ये कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, फालतहु जोहदा का, आपने वो काम अपनी कोशिश करते हुए किया, यानी उसमें अपनी पूरी कोशिश की। तो इसके अंदर ये जोहदा का हाल वाके हो रहा है और ये मारिफा है। तो कहते हैं ये और इस जैसी जो मिसालें हैं, मुताअव्वलुम बिन नकेराती, इनमें ताबील की गई है नकेरा के साथ कि ये माना के एतबार से ये सब नकेरा हैं। फला यरीदु नक्ज़न अला क़ाइदति इश्तिराति कौनिहा नकेरतन, नक्ज कहते हैं एतराज को, फला यरीदु नक्ज़न, तो एतराज वारिद नहीं होता, अला क़ाइदति इश्तिराति कौनिहा नकेरतन, उस जाबते पर वो जो हाल के नकेरा होने की शर्त का जाबता है उस पर एतराज वारिद नहीं होता। दोबारा देखिए तर्जमा कि इन सब में ताबील की गई है नकेरा के साथ के माना के एतबार से नकेरा है। फला यरीदु नक्ज़न अला क़ाइदत इश्तिराति कौनिहा नकेरतन, लिहाजा एतराज वारिद नहीं होता हाल के नकेरा होने की शर्त के जाबते पर। व तावीलुहा अला वजहैनी, और इनकी तावील जो है दो वजहों पर है, यानी दो तरीकों पर है, दो तरीकों से इनकी तावील की गई है, दो तरीकों से इनका जवाब दिया गया है, वो जवाब आगे जिक्र करेंगे बतलाएंगे। एक तावील इनके अंदर ये की गई कि ये हाल है ही नहीं, हाल मुकद्दर है, हाल मुकद्दर है और ये मफूले मुतलक हैं, यानी इनका फेल महजूफ है और वो फेल अपने फाइल या नाई फाइल से मिलकर क्या बनेगा, जुमला, और जुमला किसके हुक्म में होता है, नकेरा के हुक्म में। तो ये मफूले मुतलक हैं हाले मुकद्दरा से, ये मफूले मुतलक हैं हाले मुकद्दरा से, ये खुद हाल नहीं है बल्कि हाल तो मुकद्दर है और वो तो जुमला है और जुमला तो नकेरा होता है, तो हाल यहां भी नकेरा ही है। हां ये उससे मफूले मुतलक वाके हो रहे हैं। तो कहते हैं वतावीलुहा अला वजहैनी के इनकी तावील जो है, यानी इस जैसी जो मिसालें हैं इनकी तावील दो तरह पर है। अहदुहुमा उनमें से एक ये है कि अन्नहा मसादिरुल अफालिन महजूफतिन, के ये मसदर है अफाल महजूफा के, ऐतातरिकुल इराका, देखा अल इराका के लिए तातरिकु फेल महजूफ है और उसके अंदर हिया जमीर जो है वो है फाइल और ये अल इराका उससे मफूले मुतलक है भाई। वयन फरीदु वहदहू अयन फिरादहू, और देखो वहदहू ये भी मफूले मुतलक है और इसके लिए फेल क्या महजूफ है, यनफरिदु फेल महजूफ है भाई। और बजाहिर फिर भी देखें यनफरिदु का मादा और है और वहदहू का मादा और है, तो फिर भी शुबा किसी के जहन में आ सकता है कि यह वहदहु यनफरीदु से कैसे मफूले मुतलक हो सकता है, तो उसकी भी वजाहत आगे कर दी। ऐ इनफिरादहु, कि यह वहदहु किस माना में है, इनफिरादहु के माना में है, यानी बतलाना यह चाहते हैं कि यह वहदहु मफूले मुतलक है यनफरीदु से, लेकिन दोनों का माना एक है, लफ्ज अलग हैं लेकिन दोनों का माना एक है। तो वहदहु किस माना में है, ऐ इनफिरादहु। वतज तहिदु जोहदा का, देखो यहां पर भी जोहदा का के लिए तज तहिदु फेल महजूफ है, तो ये जोहदा का ये भी मफूल मुतलक है। फहादिहिल जुमलुल फेलियतु वकात हालन, तो ये जो जुमला फेलिया है ये हाल वाके हुए, तो और जुमला क्या होता है, नकेरा, गोया यहां पर भी हाल नकेरा ही है। तो कहते हैं वहाजिहिल मसादिरु मनसूबतुन अलल मस्दरियति, और ये वाले जो मसादिर हैं ये मनसूब हैं बिना पर मस्दर होने के, यानी मफूले मुतलक होने के। तो पहला जवाब क्या हुआ कि ये सारे जो मारिफा नजर आ रहे हैं आपको ये हाल नहीं है बल्कि ये मफूले मुतलक हैं हाल मुकद्दरा से भाई। वसानी हिमा, और दूसरी तौजीह जो है वो ये है कि अन्नहा मारिफु मौजूअतुम मौज़िअन नकिरात। मारिफु ये गैर मुनसरिफ है क्योंकि ये जमा मुंतहल जुमुअ का वजन है, और जमा मुंतहल जुमुअ आपने पढ़ा है दो सबबों के कायम मकाम है, तो ये मारिफु ये है मौसूफ और मौजूअतुन उसकी सिफत है, क्योंकि जमा बतावील जमातुन वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है। वसानी हिमा, और दूसरी तावील जो है कि अन्नहा मारिफु मौजूअतुम मौज़िअन नकिरात, कि ये ऐसे मारिफा हैं जिनको रखा गया है नकेरा के मकाम में। ये हैं तो मारिफा लेकिन किसके मकाम में रखे गए हैं, नकेरा के मकाम में रखे गए हैं, यानी तकदीरन ये नकेरा ही हैं। ये जगह तो किसकी थी, नकेरा की थी, और किसको ले आए, मारिफा को ले आए, तो मारिफा गोया किस माना में है, नकेरा ही के माना में है। ये इमाम सीबवे का जवाब है, वो फरमाते हैं कि अन्नहा मारिफु मौजूअतुम मौज़िअन नकिराति, कि ये ऐसे मारिफा हैं जिनको नकिरा के मकाम के अंदर रखा गया है। अय मुअतरिकतन व मुनफरिदन व मुजतहिदन, देखो सबका माना नकिरा के साथ कर रहे हैं। अल इराका उसका तर्जमा किसके साथ किया, मुअतरिकतन इस हाल में कि वो हुजूम करने वाली थी। वह मुनफरिदन ये वहदहू का माना मुनफरिदन से किया कि मैं उसके पास से गुजरा इस हाल में मुनफरिदन के वो अकेला था। वह मुजतहिदन ये जोहदका का तर्जमा किससे किया, मुजतहिदन से कि आपने वो काम किया मुजतहिदन इस हाल में कि आप कोशिश करने वाले थे। फसूरतु व इनकानत मारिफतन फहियफित तकदीर इन नकेरतुन, तो कहते हैं सूरत जो है इनकी वो अगरचे मारिफा वाली है, फहियफित तकदीर इन नकेरतुन, तो ये तकदीर में नकेरा है भाई। कमा अन्न हसन अल वजही फी सूरत इल मारिफती, जैसे कि हसन उल वजही जो है ये मारिफा की सूरत में है। वहियफिल माना नकेरतुन, और ये माना के अंदर नकेरा है। हसन उल वजही, तालिब इलम के जहन में सवाल पैदा हो सकता है ना कि मारिफा नकेरा के माना में कैसे हो सकता है, तो साहिब जामी उसकी मजीद वजाहत कर रहे हैं कि हसनुल वजह ही को देख लो, ये सूरत के एतबार से मारिफा है लेकिन ये माना के एतबार से नकेरा है। देखो हसन मुजाफ है और अल वजह ही मुजाफुन इलै है, और याद रखो मैंने आपको बतलाया था कि इजाफत दो किस्म की है, एक इजाफत लफ्जी और एक इजाफत मानवी। मैं पहले भी बयान कर चुका हूं लेकिन बार बार इसीलिए जिक्र करता हूं कि ये चीजें आपके जहन में जम जाएं। तो एक है इजाफत लफ्जी, एक है इजाफत मानवी। इजाफत लफ्जी इसे कहते हैं कि सीगा सिफत का हो और मुजाफ हो रहा हो अपने मामूल की तरफ, और सिफत के सीगे से मुराद इसमें फाइल, इसमें मफूल और सिफत मुशब्बा है, और सिफत के सीगे इसमें तफजील वगैरह मुराद नहीं है। तो सीगा सिफत का हो मुजाफ हो अपने मामूल की तरफ, इसको इजाफत लफ्जी कहते हैं। मसलन मैं कहता हूं जैदुन जारिबुन अमरन, तवज्जो है जैदुन जारिबुन अमरन। मैंने आपको बतलाया था कि सिफत के सीगे भी अपने फेल जैसा अमल करते हैं, तो यहां पर भी देखो जैदुन जारिबुन अमरन, ये अमरन को नसब किसने दिया, जारिबुन ये जो सिफत का सीगा है, गोया मालूम हुआ ये अमरन मामूल है जारिब का। ये उसमें अमल कर रहा है, तो यह सिफत का सीगा है और अमरन इसका मामूल है, तो इसकी तरफ इसकी इजाफत कर दो, जैदुन जारिबु अमरिन। तो याद रखो ये इजाफत लफ्जी है, ये इजाफत लफ्जी है। और याद रखना इजाफत लफ्जी सिर्फ लफ्जों में तखफीफ का फायदा देती है कि मुजाफ पर से तनवीन गिर जाती है। पहले क्या था जारिबुन अमरन, अब जारिबुन से तनवीन गिर गई, जारिबु अमरिन, सिर्फ यह तनवीन गिरी है, लफ्जों में तखफीफ आई है। इसी तरह अगर यहां नूने तस्निया होता वो भी इजाफत से गिर जाता, नूने जमा होता वो भी इजाफत से गिर जाता। इसके अलावा यह इजाफत लफ्जी और कोई फायदा नहीं देती, यानी इस इजाफत की वजह से जारिबुन के अंदर न तारीफ आई न तखसीस आई, ये जैसे पहले नकेरा था अभी भी नकेरा का नकेरा ही है। पहले क्या था जैदुन जारिबुन अमरन, यह जारिबुन नकेरा है, नकेरा है। मारिफा की किस्में इस पर लागू करके देख लिया करें, देखो ये जमीर है जारिबुन नहीं, ये इसमें इशारा है, ये इसमें मौसूल है, ये आलम है किसी का, क्या इस पर अलिफ लाम है, तो इनमें से कोई भी चीज नहीं है, जैदुन जारिबुन अमरन, तो लिहाजा ये नकेरा है। तो जब आप इसकी इजाफत कर देंगे यानी अपने मामूल की तरफ, तो भी ये नकेरा का नकेरा ही रहेगा, यानी इजाफत से पहले जैसे जारिबुन नकेरा था अभी भी इजाफत के बाद भी उसी तरह नकेरा है। तो इजाफत लफ्जी किसे कहते हैं कि सीगा सिफत का हो और मुजाफ अपने मामूल की तरफ। इसके अलावा बाकी जितनी इजाफतें हैं वो इजाफत मानवी कहलाती हैं, यानी वो माना के अंदर भी फायदा देती हैं, सिर्फ लफ्जों में नहीं, लफ्जों में भी तखफीफ आएगी और माना के अंदर भी वो फायदा देती हैं कि वो जो मुजाफ है वो मारिफा बन जाएगा या उसमें तखसीस आ जाएगी। उसमें फिर दो सूरतें हैं कि अगर नकेरा की इजाफत नकेरा की तरफ करेंगे तो वहां तखसीस आएगी। गुलाम रजुलिन, गुलाम की इजाफत मैंने रजुल की तरफ की, गुलाम कोई सिफत का सीगा है नहीं, तो ये सिफत का सीगा नहीं, मालूम हुआ ये इजाफत लफ्जी नहीं इजाफत मानवी है। और इजाफत मानवी में अगर नकेरा की इजाफत नकेरा की तरफ की जाए तो ये तखसीस का फायदा देती है। गुलाम का लफ्ज पहले दुनिया के हर गुलाम पर सादिक आ रहा था, लेकिन जब मैंने रजुल की तरफ इजाफत कर दी किसी आदमी का कोई गुलाम, तो इसे औरतों के गुलाम निकल गए, देखो तखसीस आ गई। और अगर गुलाम की इजाफत में मारिफा की तरफ करूं गुलामु जैदिन, तो फिर इस सूरत में देखो यह मुतायन एक गुलाम पर अब दलालत कर रहा है, यह भी मारिफा बन गया। तो याद रखो कि इजाफत मानवी में अगर किसी लफ्ज की इजाफत मारिफा की तरफ की जाए तो फिर वह तारीफ का फायदा देती है, वह मुजाफ भी मारिफा बन जाता है। और अगर उसमें नकेरा की इजाफत नकेरा की तरफ की जाए तो फिर वहां सिर्फ तखसीस आती है। तो इजाफत मानवी कितने फायदे देती है, या तारीफ या तखसीस। तारीफ किसके अंदर, जब नकेरा की इजाफत मारिफा की तरफ हो। तखसीस किस वक्त, जब नकेरा की इजाफत नकेरा की तरफ हो। जबकि इजाफत लफ्जी वो न तारीफ का फायदा देती है न तखसीस का। वो याद रखो, ये लफ्ज याद रखना, वो तकदीर इन्फिसाल में है। वो इसी तरह है जैसे पहले अलग थी, जैसे जारिब का लफ्ज पहले अलग था नकेरा महज था, ये अभी भी जारिबु अमरिन अभी भी नकेरा महज है। बात समझ में आ गई, ना इसमें तारीफ आई है ना इसमें तखसीस। तो इजाफत लफ्जी किसे कहते हैं, जिसमें सीगा सिफत का मुजाफ हो रहा हो अपने मामूल की तरफ। इसके अलावा बाकी तमाम इजाफतें व इजाफतें मानवी हैं, चाहे सीगा सिफत का ही हो लेकिन अपने मामूल की तरफ मुजाफ ना हो रहा हो। जैसे करीमुल बलदी, करीम सिफत मुशब्बा है, सिफत का सीगा है, लेकिन ये अपने मामूल की तरफ नहीं मुजाफ, यानी अपने फाइल या मफूल की तरफ नहीं मुजाफ, बल्कि ये तो बलद की तरफ मुजाफ है। तो ये भी इजाफत मानवी हुई। और गुलाम उजैदीन, ये भी इजाफत मानवी हुई, क्योंकि इसमें तो गुलाम सिरे से सिफत का सीगा ही नहीं है। बात समझ में आ गई। तो मैं बात कर रहा था हसनुल वजह की, हसनुल वजह। याद रखो ये हसन ये सिफत मुशब्बा है और अल वजह इसका फाइल है। मसलन मैं कहता हूं जैदुन हसनुन वजहुहु, जैदुन हसनुन वजहुहु, जैद के हसनुन अच्छा है, वजहुहु उसका चेहरा। तो ये वजहुहु फाइल है हसन के लिए, ये इसका मामूल है। और फिर इसी हसन सिफत मुशब्बा की इजाफत कभी कर दी जाती है अपने मामूल की तरफ, तवज्जो है, तो क्या बन गया हसनु वजही ही। और फिर कभी इस जमीर को आखिर से खत्म करके इसके इवज इस पर अलिफ्लाम ले आते हैं, हसनुल वजह जैद उन हसनुल वजह, तो हसन सीगा सिफत का है और मुजाफ हो रहा है अपने मामूल की तरफ, तो यह इजाफत कौन सी हुई, इजाफत लफ्जी हुई, और इजाफत लफ्जी न तारीफ का फायदा देती है ना तख्सीस का। यह हसन का लफ्ज जैसे इजाफत से पहले नकिरा था अभी भी उसी तरह नकिरा का नकिरा है, ना इसमें तारीफ आई ना इसके अंदर तख्सीस आई। तो कहते हैं कमा अन्ना हसन अल वजही फी सूरत अल मारिफती वही फिल माना नकिरतुन, जैसे कि हसन अल वजही जो है वो मारिफा की सूरत में है और माना के अंदर ये नकिरा है। फइन काना साहिबुहा ऐ साहिबुल हाल नकिरतन महज़तन, अच्छा जरा मतन मतन देखें आगे, कहते हैं फइन काना साहिबुहा नकिरतन, अगर जुल्हाल जो है वो नकेरा हो, वजबा तकदीमुहा, तो वाजिब है उसको मुकद्दम करना। भाई इन्होंने आपको बतलाया था गुज़श्ता सबक में आपने पढ़ा था कि ये जुल्हाल जो होता है ये है मुबतदा के दर्जे में और जो हाल होता है वो खबर के दर्जे में है, तवज्जो है। तो लिहाजा मुबतदा में असल क्या है, वो मारिफा होना चाहिए, और अगर मारिफा ना हो नकिरा मुबतदा बनाना चाहते हैं तो फिर उसमें कोई ना कोई तख्सीस होनी चाहिए, नकिरा मुखस्ससा होना चाहिए, और अगर तख्सीस की और कोई सूरत ना हो मुबतदा के अंदर तो फिर उसकी खबर पर उसको मुकदम कर देते हैं। जैसे फिदारी रजुलुन, फिदारी खबर मुकदम है और रजुलुन मुबतदा मुअख्खर है, और ये तो नकिरा महज है, तो सवाल पैदा होता है कि ये रजुलुन तो नकिरा है ये मुबतदा कैसे बन गया, तो जवाब ये कि इसकी खबर को इस पर मुकदम किया गया, और तकदीम माहकोहु ताखिर युफीदुल हसरा वल कसरा व तख्सीस, इसकी वजह से इसमें तख्सीस आ गई। तो जुल्हाल में भी इसी तरह है, जुल्हाल भी क्या होना चाहिए, या तो मारिफा होना चाहिए, अगर मारिफा नहीं है तो नकिरा मुखस्ससा होना चाहिए, और अगर उसमें तख्सीस का और कोई तरीका नहीं है तो फिर उस पर उसके हाल को मुकद्दम करना वाजिब है। हाल को मुकद्दम करेंगे तो जुल्हाल के अंदर तख्सीस आ जाएगी। तो कहते हैं फइन काना साहिबुहा नकिरतन, अगर जुल्हाल जो है वो नकिरा हो, वजबा तकदीमुहा, तो उस पर हाल को मुकद्दम करना वाजिब है। जुल्हाल क्या है, नकिरा महज है, तो उसके हाल को उस पर मुकद्दम करना वाजिब है, इससे उस जुल्हाल के अंदर तख्सीस आ जाएगी और उससे हाल का आना सही हो जाएगा। माना समझ में आ गया। अब शरा के साथ देखिए, कहते हैं फइन काना साहिबुहा ऐ साहिबुल हाली नकिरतन महज़तन, नकिरा के बाद साहिब जामी महज़ा का लफ्ज़ ले आए। अगर जुल्हाल नकिरा महज हो यानी उसमें और कोई तख्सीस का तरीका ना हो, फिर उस सूरत में उसको मुकद्दम करना वाजिब है अपने हाल पर। अगर उसमें पहले से तख्सीस मौजूद है तो फिर हाल को उस पर मुकद्दम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहते हैं फइन काना साहिबुहा ऐ साहिबुल हाली नकिरतन महज़तन, और अगर जुल्हाल जो है वो नकिरा महज़ा हो, लम तकुन फीहा शाइबतु तख्सीसिन बीमा सिवत तकदीमी, शाइबा कहते हैं शाबा यशूबु शौबन का माना है एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाना, तो शाइबा किसको कहेंगे, शाइबा मिली हुई चीज, मिलावट, यहां मुराद असर है। शाइबा का क्या माना करें, यहां असर। कहते हैं अगर जुल्हाल जो है वो नकिरा महज़ा हो, लम तकुन फीहा शाइबतु तख्सीसिन, और उसके अंदर तख्सीस का कोई असर ना हो, बीमा सिवा तकदीमी सिवाय तकदीम के, तकदीम के अलावा उसमें तख्सीस का कोई असर ना हो, वलम तकुन इल्हाल मुश्तरिकतम बैनहा व बैन मारिफतिन, और वो हाल जो है उस नकिरा और मारिफा के दरमियान मुश्तरक ना हो, नहु जा अनी रजुलुन व ज़ैदुन राकी बैनी। आपने हमें क्या कहा कि जुल्हाल अगर नकिरा महज हो तो हाल को उस पर मुकदम करना वाजिब है, लेकिन याद रखो अगर वो नकिरा ऐसा है कि उसके साथ एक मारिफा भी आ रहा है और वो हाल दोनों से वाकई हो रहा है तो इस सूरत में फिर हाल को मुकदम करना वाजिब नहीं है। तो कहते हैं वलम तकुनिल हालु मुश्तरिकतम बैनहा व बैन मारिफतिन, और वो हाल जो है उस नकेरा और किसी मारिफा के दरमियान मुश्तरक न हो, नहु जा अनी रजुलुन व ज़ैदुन राकी बैनी, आया मेरे पास एक आदमी और ज़ैद इस हाल में के दोनों सवार थे। तो जब जुल्हाल नकेरा महज हो और वो हाल इसकी और मारिफा के दरमियान मुश्तरक भी न हो तो वजब तकदीमुहा, तो उस हाल को मुकद्दम करना वाजिब है। तो कहते हैं वजब तकदीमुहा, तो वाजिब है उस हाल को मुकद्दम करना, ऐ तकदीमुल हाल अला साहिबिहा, यानी हाल को मुकद्दम करना अपने जुलहाल पर, लियतखस्ससन नकिरा तो भी तकदीमिहा, ताकि नकिरा जो है वो तख्सीस हासिल कर ले अपनी तकदीम की वजह से, लिअन्नहुमा फिल माना मुबतदाउन व खबरुन, इसलिए क्योंकि ये हाल और जुलहाल जो हैं ये माना के अंदर मुबतदा और खबर हैं। जुलहाल किसके दर्जे में? मुबतदा, और हाल किसके दर्जे में? खबर। तो कहते हैं लियतखस्ससन नकिरा तु भी तकदीमी हा, ताकि नकिरा तख्सीस हासिल कर ले अपनी तकदीम की वजह से, लिअन्नहुमा फिल माना मुबतदा उन व खबर उन, इसलिए क्योंकि हाल और जुलहाल जो है माना के अंदर मुबतदा और खबर हैं, वली अल्लाह तलता बिसा बिस सिफती फिन नस्बी, और ताकि कहीं हाल का इल्तिबास न आए सिफत के साथ नसब की हालत में, फी मिसल कौलीना इस जैसी मिसालों में। देखिए भाई ये मिसाल जरा, जरब तो रजुलन राकिबन, रजुलन देखो नकेरा है और आप इससे राकिबन को हाल बनाना चाहते हैं हाल, लेकिन जब आप कहेंगे जरब तो रजुलन राकिबन तो कोई भी इसको राकिबन को हाल नहीं समझेगा, वो तो समझेगा ये तो सिफत है। क्यों? क्योंकि रजुलन भी नकिरा है राकिबन भी नकिरा है, रजुलन भी मंसूब है राकिबन भी मंसूब है। तो देखो जब जुलहाल नकिरा हो और मंसूब हो तो उस सूरत में अगर हाल को आप मुखर रखेंगे तो हाल का इल्तिबास लाजिम आएगा किसके साथ? सिफत के साथ। लिहाजा इस सूरत में वाजिब हुआ कि हाल को जुलहाल पर मुकदम किया जाए और यूं कहा जाए जरबतु राकिबन रजुलन, जरबतु राकिबन रजुलन। अब इनके दरमियान मौसूफ सिफत का इश्तिबा नहीं होता, इसलिए क्योंकि सिफत कभी अपने मौसूफ पर मुकदम नहीं होती। तो लिहाजा जब जुलहाल नकिरा हो और मंसूब हो तो उस वक्त हाल का इल्तिबास लाजिम आता है किसके साथ? सिफत के साथ, तो उसको मुकद्दम करना वाजिब है। तो जब नसब वाली हालत में हाल को जुलहाल नकिरा पर मुकद्दम करना वाजिब है तो फिर रफा और जर वाली हालत में भी लाजिम करार दिया गया कि हाल को मुकद्दम करना वाजिब है। किस लिए? तरदन लिल बाबी, ताकि सारे बाब का एक ही हुक्म हो जाए। यह नहीं कि बाज जगह आप कहें वाजिब है मुकद्दम करना और बाज जगह कहें वाजिब नहीं है। तो कहते हैं वली अल्लाह तल तबी सभी सिफति फिन नस्बी, और ताकि हाल का इल्तिबास ना आए सिफत के साथ, फी मिसल कौलीना हमारी इस जैसे कौल के अंदर, जरब तू रजुलन राकिबन सुम्मा कुद्दिमत फी साइरिल मवाज़ई, फिर हाल को मुकद्दम कर दिया गया फी साइरिल मवाज़ई बाकी जगहों में भी, यानी रफा और जार वाली जगहों में भी हाल को मुकद्दम कर दिया गया। वह इल्लम तल तबिस, अगरचे उस सूरत में तो इल्तिबास नहीं था। मसलन देखो मरर तू भी रजुलिन राकिबन, मरर तू भी, अब देखो रजुलिन नकिरा है मजरूर है और आगे राकिबन हाल है, यहां तो कोई इल्तिबास नहीं क्योंकि मौसू सिफत का इराब तो एक होता है और यह रजुलिन तो मजरूर है और राकिबन मनसूब है, तो पता चल रहा है यह मौसू सिफत नहीं है। या मैं कहता हूं जानी रजुलन राकिबन, जानी तो रजुलन देखो मरफू है और राकिबन मंसूब है, अगरचे दोनों नकिरा हैं लेकिन मौसू सिफत का इश्तिबा नहीं होता क्योंकि मौसू सिफत का इराब तो एक होता है। तो रफा और जर वाली हालत में तो इल्तिबास नहीं था, सिर्फ नसब वाली हालत में इल्तिबास होता था कि ये शायद आपस में मौसूफ सिफत है, लेकिन जब नसब वाली हालत में लाजिम करार दिया गया कि हाल को जुलहाल पर मुकदम करना वाजिब है इस इल्तिबास से बचने के लिए, तो बाकी दोनों सूरतों के अंदर भी हाल को मुकदम करना वाजिब करार दिया गया तरदन लिल बाब, बाब की मुआफकत के लिए कि पूरे बाब का एक ही हुक्म हो जाए भाई, ये माना है। तो कहते हैं मकुद्दिमत फी साइरिल मवाज़ई, फिर इस हाल को मुकद्दम कर दिया गया बाकी जगहों के अंदर भी, व इन लम तल तबिस, अगरचे इसका इल्तिबास न आ रहा हो तरदन लिल बाबी, तरदन लिल बाब यानी पूरे बाब को मुआफिक बनाने के लिए, पूरे बाब का एक ही हुक्म ताकि हो जाए कि जुलहाल जब नकेरा हो और तख्सीस का और कोई तरीका ना हो तो हाल को उस पर मुकद्दम करना वाजिब है, चाहे जुलहाल मंसूब हो मरफू हो या मजरूर हो। तो साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि जुलहाल अगर नकेराए महज हो तो उसके हाल को उस पर मुकदम करना वाजिब है। और इसकी वजह क्या है, साहिब जामी ने दो वजहें बताई। एक तो ये वजह जिक्र की कि जुलहाल चूंकि नकेराए महज है, तो जब इस पर इसके हाल को मुकदम करेंगे तो जुलहाल के अंदर तख्सीस आ जाएगी, वो नकेराए मुखससा बन जाएगा और नकेराए मुखससा से तो हाल आ सकता है, तो जुलहाल का जुलहाल होना सही हो जाएगा और उससे हाल का आना सही हो जाएगा जब आप हाल को उस पर मुकदम कर देंगे। और दूसरी वजह कि इसलिए भी मुकदम किया जाता है हाल को ताकि कहीं नसब वाली हालत में हाल का इल्तिबास सिफत के साथ लाजिम न आए, जैसे ज़रबतु रजुलन राकिबन, यहां अब रजुलन जुलहाल जो है वो नकिरा है और उसके बाद अगर राकिबन हाल को आप लाएंगे तो देखने वाला यही समझेगा कि ये तो हाल नहीं है, ये तो आपस में मौसूफ सिफत है, क्योंकि रजुलन भी नकिरा और राकिबन भी नकिरा और नीज रजुलन भी मनसूब और राकिबन भी मनसूब, तो यहां पर हाल का इल्तिबास लाजिम आएगा सिफत के साथ, लिहाजा हाल को मुकदम किया जाएगा जुलहाल पर, तो फिर अब वो इल्तिबास नहीं रहेगा। और जब इल्तिबास से बचने के लिए नसब वाली हालत में हाल को मुकदम करना वाजिब हुआ तो बाकी हालतों के अंदर भी मुकदम करना वाजिब करार दिया गया तरदन लिल बाब, ताकि सारे बाब का एक ही हुक्म हो जाए। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।